नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में 3rd राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वीएन राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। हर वर्ष 23 अगस्त को यह दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और साथ ही विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉ. मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉ. सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे। उनके साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जापान जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी संबंधों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये INS सुदर्शनी का 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नए क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। IMD ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहंडी में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहंडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंसाधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि GRSE ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। GRSE की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातुकर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। चौथे चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे, आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमेरिका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमेरिकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमेरिका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने होर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7,000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमरीकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमेरिका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। और अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। भारत ने पहला मुकाबला 165 रन से जीता था। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन।
ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर रहीं। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर है। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 शुरू होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं।
और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक प्रतिबंध अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।